बीबीसी इंडिया बोल तारीख 16 जून दिन शनिवार। मैं हूं वात्सल्य राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के फायदे गिनाते हुए कहा है कि इससे करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। इसके जरिए गांव के लोगों खासकर महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता। चर्चा में फोन के जरिए जुड़ेंगे डिजिटल क्षेत्र के एक्सपर्ट ओसामा मंजर। लेकिन थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ईद के जश्न के दौरान कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिले। काबुल की पुलिस का कहना है कि तालिबान के कुछ चरमपंथी बिना हथियारों के शहर में आए और ईद की छुट्टी का जश्न मनाने लगे। अफगानिस्तान में शुक्रवार से 3 दिन का संघर्ष विराम लागू किया गया है। इस दौरान सेना और चरमपंथियों के बीच किसी तरह के संघर्ष की खबरें नहीं आई हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष दल यमन की राजधानी सना पहुंच गया है, जहां वह हौथी विद्रोहियों के साथ आपातकालीन बातचीत करेगा। मार्टिन ग्रिफिथ के नेतृत्व में यह दल सना पहुंचा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि विद्रोही होदेदाह एयरपोर्ट पर अपना कब्जा छोड़ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को चिंता है कि अगर होदेदाह इलाके में चल रहा संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो वहां के हालात बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर बचाव सामग्री एयरपोर्ट के जरिए ही पहुंचती है। यमन सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ियों ने होदेदाह एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं वाशिंगटन में सऊदी अरब के दूतावास में मौजूद राजनीतिक सलाहकार फहद नाजेर का कहना है कि जब हौदी विद्रोहियों के हाथों से होदेदाह का नियंत्रण ले लिया जाएगा तब वहां के स्थानीय नागरिकों के हालात में सुधार होगा। फहद नाजेर ने कहा, होदेदाह के हालात यमन की वजह से खराब हुए हैं और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने भी की है। हौथी विद्रोही दवाइयों और खाने को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन इलाकों में उनका नियंत्रण है वहां वे लैंडमाइन का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि जब ये विद्रोही होदेदाह इलाके को छोड़ेंगे तभी वहां के हालात बेहतर हो पाएंगे। ये थे वाशिंगटन में मौजूद सऊदी अरब दूतावास के राजनीतिक सलाहकार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन की सरकारी मीडिया ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसमें उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर 25% टैक्स लगाने की बात कही थी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कहा है कि बुद्धिमान लोग जहां पुलों का निर्माण करते हैं वहीं बेवकूफ लोग दीवारें खड़ी करते हैं। द ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ट्रंप वैश्विक प्रशासन के नियम बदलने में लगे हुए हैं। वहीं चाइना डेली ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार बदलते मिजाज से लगता है कि फिलहाल ट्रेड वॉर की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। चाइना टीवी का कहना है कि अमरीका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुँचा रहा है। चाइना टीवी के एक कार्यक्रम के समाचार वाचक ने कहा, जिस बात से सबसे अधिक परेशानी हुई है वह यह है कि अमरीका ने अभी तक ट्रेड वॉर को रोकने के प्रयास नहीं किए हैं। इस तरह की कोशिशें दोनों ही देशों के हितों के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। चीन इसका पूरी तरह विरोध करता है। ये थे चाइना टीवी की एक समाचार वाचिका के शब्द। इटली की तरफ से लौटा दिए गए कुछ अप्रवासियों के जहाज में से कुछ अप्रवासियों को फ्रांस ने अपने देश में शरण देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही स्पेन के उप प्रधानमंत्री कार्मेन कैल्वो ने बताया है कि फ्रांस की तरफ से उन्हें 600 अप्रवासियों को शरण देने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इथोपिया और सोमालिया आपस में 4 समुद्री बंदरगाहों और दोनों देशों को जोड़ने वाले रोड नेटवर्क को बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। इथोपिया के प्रधानमंत्री एबे अहमद ने सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो से मुलाकात की जिसके बाद दोनों देशों में यह सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश के नेता चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर भी सहमत हुए हैं। सोमालिया में इथोपिया के सैनिक जिहादी समूहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच में फ्रांस को पेनल्टी दी गई वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम के जरिए, जिसकी मदद से फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात देने में कामयाबी पाई। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के फायदे गिनाते हुए कहा है कि इससे करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। इसके जरिए गांव के लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी बदल गई है, भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर मामलों के एक्सपर्ट और वकील विराग गुप्ता, और फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक ओसामा मंजर साहब। स्वागत है आप दोनों का, स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया, ये शब्द तमाम बार सुना जाता है। गूगल के सर्च इंजन पर डिजिटल इंडिया टाइप करते ही महज 52 सेकंड में 1,15,00,000 नतीजे मिलते हैं। अगर डिजिटल इंडिया के आधिकारिक पेज पर जाएं तो वहां इसके विजन यानी परिकल्पना का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि इस कार्यक्रम का विजन भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात की और उन्होंने भी इसके विजन की चर्चा की।
जब डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को, गरीब को, किसानों को, युवाओं को, गांवों को डिजिटल की दुनिया से जोड़ना है, उन्हें एम्पावर करना है।
डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने जो कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी भी बात की।
चाहे गांवों को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ना हो, करोड़ों लोगों को डिजिटली साक्षर करना हो, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से हर एक के हाथ में पहुंचाना हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को देश में विकसित करना हो, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना हो, दूर दराज के क्षेत्रों में बीपीओस खोलने को अभियान चलाना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से हो रहे फायदों की भी जानकारी दी, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
डिजिटल इंडिया आज देश भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। डिजिटल इंडिया से 4E साकार हो रहे हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट। एक ऐसी लड़ाई है जो दलाली बनाम डिजिटल इंडिया, दलाली को रोकने का काम डिजिटल इंडिया कर रहा है। हम हमारे हक की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार के दावे सामने हैं। हम हर पहलू पर अपने दोनों मेहमानों गुप्ता जी और मंजर साहब से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी सर, कुमार बोल रहा हूँ।
जी बताइए अपनी बात, क्या कहना है आपका?
सर, डिजिटल इंडिया को अगर हम न्यू डेवलपमेंट इंडिया नाम दे तो कोई हेल्प नहीं होगी।
जी
जी, इसमें देखो सर, मैं आपको बताता हूँ ये बात कि अगर हम 8 साल पीछे जा करके देखें तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो लड़के थे ना, उनको एक एक दिन वेस्ट करना पड़ता था आवेदन करने के लिए।
जी,
लेकिन आज वो काम 1 घंटे में हो रहा है।
एक घंटे के अंदर काम हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। विराग गुप्ता साहब, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। आपने एक श्रोता की बात की सुनी जो कह रहे थे कि 8 साल पहले अगर हम जाते हैं तो स्थिति कुछ अलग थी, आज डिजिटल इंडिया से खासतौर पर छात्रों की जिंदगी आसान हो रही है। हमने आपको प्रधानमंत्री के दावे भी सुनाए जो उन्होंने दावे किए। हम बार बार कुछ शब्द सुनते हैं, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल एजुकेशन, लेकिन सवाल ये है कि साल 2018 भारत क्या पूरी तरह से डिजिटल इंडिया बन गया है? क्योंकि आपने एक किताब भी लिखी है, डिजिटल इंडिया, भारत और इंडिया।
नहीं देखिए, भारत पूरी तरह से डिजिटल नहीं बना और सरकार के भी दावे नहीं हैं। इतिहास में आप देखेंगे तो तकनीकी के प्रगति के कई आयाम होते हैं, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ या तेल का आविष्कार हुआ या इंजन आया, रेल आया, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी है। और जब 21वीं शताब्दी आई थी तब बोला गया था कि भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर गया, डिजिटल इंडिया उसका एक सोपान है। उसका आप नामकरण कुछ भी कर दें वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं पड़ता है। और डिजिटल के अपने फ़ायदे हैं दूर दराज तक, इससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है, इससे भ्रष्टाचार कम होता है, दलाली कम होते हैं। पर इसके दो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि क्या डिजिटल इंडिया में भारत और ज़्यादा अलग हो जाएगा, क्या गरीबों की जो विषमता है वो बढ़ेगी, और दूसरे नंबर पर डिजिटल इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जो इसके ऑपरेटर्स हैं, जो इसके बिजनेस एंटिटीज़ हैं, मोस्टली वो विदेशी कंपनियाँ हैं, तो क्या उनका रेगुलेशन कैसे करेंगे, उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे और उनकी जवाबदेही कैसे बनाएंगे, तो वो महत्वपूर्ण है।
जी ये महत्वपूर्ण सवाल है, हम इन पर लौटेंगे आपके पास दोबारा। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। लगता है बात नहीं हो पा रही है, हमारे लिसनर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओसामा मंजर साहब, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा क्योंकि आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो कुछ बात आंकड़ों की, जैसे अभी विराग गुप्ता साहब से बात हो रही थी, साल 2015 में अगर हम लौटते हैं तो भारत में मोबाइल कनेक्शनों की संख्या उस वक्त 1 अरब हो गई थी। साल 2016 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या करीब 35 करोड़ थी। चुनाव जो उस दौरान हुए या उसके बाद हुए, मुफ्त वाईफाई के कई पार्टियाँ वादे करती हैं, और इस बीच में प्रधानमंत्री ने कल जो जानकारी दी कि 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं और उनके जरिए 1,83,000 गांव पंचायतों को डिजिटल डिलीवरी सिस्टम से जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि देश में लोग खुद कितने डिजिटल हो रहे हैं और सरकार की कोशिशों का कितना फायदा हो रहा है।
देखिए मैं तो कहूंगा कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें कोई गलती नहीं है। सब उन्होंने कहा है करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है, तो बात तो सही है कि करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कितने करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। हमारी आबादी जो है 130 करोड़ की है, तो कितने करोड़ लोगों का, अगर 2 करोड़ लोगों को भी फायदा हो रहा है तो बात तो करोड़ों की है, लेकिन परसेंटेज में कितनी है, इस बात के सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आंकड़ों से पता लगेगा कि हम डिजिटल इंडिया के तहत हम हैं कहाँ पे। हालांकि सरकार अपनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बोला कि 2015 में 1 अरब लोगों के पास मोबाइल पहुंच गया था, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मोबाइल 1 अरब लोगों के पास नहीं पहुंचा था।
जी मैंने कनेक्शन कहा था कि 1 अरब मोबाइल कनेक्शन थे उस समय, मैंने ये कहा।
हाँ तो वो मोबाइल कनेक्शन अब किसको, मेरे ख्याल से हम लोगों को वर्ड डिफरेंट यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल से 1 अरब सिम कार्ड बेच दिया गया था
जी।
जिसको आप 1 अरब सिम कार्ड कितने लोगों के पास गया, शायद वही लोग कनेक्टेड हैं, बाकी लोग तो कनेक्टेड नहीं। तो इसमें एक और आंकड़ा ये है कि रूरल इंडिया जो भारत जिसको बोलते हैं और अर्बन इंडिया जो इंडिया अंग्रेजी में बोलते हैं, दोनों में इतना ज्यादा फर्क है कि 70-72% औरतें पूरे देश की जो है अभी भी उनके पास मोबाइल नहीं है। और मैं कल ये आंकड़ा एक और किसी को बता रहा था मैं कि 92% रूरल इंडिया की वुमेन है जिनके पास मोबाइल नहीं है। जब मोबाइल नहीं है तो ऑब्वियसली सिम भी नहीं है उनके पास
जी,
और ना ही कोई एक्सेस नहीं है। प्लस अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 400 मिलियन बता रहे हैं, 435 मिलियन के करीब बता रहे हैं कि इंटरनेट पहुंच चुका है
जी।
अगर उसको मैं सही भी मान लूं तो भी 70-80% लोग के पास इंटरनेट नहीं पहुंचा है ठीक है। और डिजिटल इंडिया जो है वो तो प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि असल डिजिटल इंडिया तब है जो एग्रीकल्चर में पहुंचे, लोगों के पास पहुंचे, आम जनता के पास पहुंचे।
ओसामा साहब हम इन सवालों पर लौटेंगे आपके पास दोबारा, इन पर चर्चा करेंगे, महिलाओं की और किसानों की बात भी हम समझेंगे। तब तक एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो
जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं गुजरात से बोल रहा हूँ
जी। अपना नाम बताइए।
मोरबी के बात आमरण मेरा गांव में डीके पर मेरा नाम है डीके परमार
जी। बताइए परमार साहब।
सर मैं कहना चाहता हूँ डिजिटल इंडिया अपनी जगह बराबर है, लेकिन जब मॉब लिंचिंग, अनटचेबिलिटी, बेरोजगारी, रोड एंड लाइट, इसकी जरूरत भी ज्यादा है।
यानी आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के साथ ये जो असल दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। लगता है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओसामा साहब, मैं दोबारा आपके पास लौट रहा हूं। आपने महिलाओं की बात की और खासतौर पर गांव की महिलाओं की बात की। प्रधानमंत्री ने कल जो लाभार्थियों से बात की, उन्होंने दावा किया कि महिलाओं की जिंदगी में बहुत बदलाव आ रहा है, गाँव की महिलाओं की जिंदगी में। और जो आपका अनुभव है वो क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
देखिए, हम तो सिर्फ अभी ये अनुभव से ही बात करना चाहते हैं। हम लोग 500 जगहों पे खुद काम करते हैं, तो गांव की हालत ये है कि हमारे पास मोबाइल पहुंच जाने के बावजूद भी हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते हैं, हम इंटरनेट को ठीक से चूम नहीं पाते हैं, वो 2G पे लटके रहते हैं।
यानी स्पीड कम है, आप ये कहना चाहते हैं?
स्पीड बहुत कम है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जब तक एक्सेस जो है या ब्रॉडबैंड है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो हम जो है वो जो कह रहे हैं कि डिजिटल की वजह से दलाली कम होगी, तो जाहिर सी बात है कम होगी, लेकिन जब एक्सेस ही होगा तभी तो कम होगा, ऐसे तो कम नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं बहुत जल्दी से कि बहुत सारी जगहों पे हमने डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज कर दी हैं, लेकिन उसके बतौर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो डिजिटल इंक्लूजन की जगह डिजिटल एक्सक्लूजन बन गया।
जी,
ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो गांव में देखी जा रही है कि बिना डिजिटल के हमें खाना नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता और डिजिटल काम नहीं करता।
जी, तो मैं एक सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा गांव को लेकर, जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात है, जिनके पास मोबाइल नहीं है क्या उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक श्रोता हमारे साथ हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं जहांगीर मंडल बात कर रहे हैं बंगाल से।
जी,
मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया के बारे में किया है तो हमारा देश में 70% आबादी में ग्रामीण इलाका है।
जी,
उस पर जो डिजिटलाइजेशन कर रही है, उस पर जो शिक्षा के हाल तो बहुत अच्छी नहीं थी।
जी,
तो उसका अच्छी तरह से क्या होगा, हमारा ज्यादातर लोग शिक्षा में नहीं थे तो उसका अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही है।
मतलब डिजिटल के माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आपका ये शिकवा है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी नमस्कार सर।
जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं अशोक सिल्ला बोल रहा हूँ, हरियाणा सिरसा से।
जी अशोक जी,
ये बात बिल्कुल सही है कि जब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, जो काम 7 दिन में पूरा होता था वो आज 1 दिन में या 1 घंटे में पूरा हो रहा है, तो ये बात सही है कि हम जो है डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। जी
जी, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अशोक जी को ऐसा लगता है।
लेकिन ये परिवर्तन 3 साल में जरूर हुआ है।
जी
जी हाँ।
विराग गुप्ता साहब, मैं अब आपके पास दोबारा वापस आ रहा हूँ। आपने श्रोताओं को लगातार सुना, कुछ कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, कुछ कह रहे हैं जैसे अशोक जी ने कहा फायदा हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि फायदा नहीं हो रहा है। सवाल शिक्षा को लेकर आ रहा है और एक बड़ा सवाल जो अभी ओसामा साहब उठा रहे थे, किसानों का। नरेंद्र मोदी जी का कहना है किसान केवल मौसम की जानकारी नहीं, बल्कि मिट्टी की जानकारी नहीं, बल्कि वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल बाजार से भी जुड़ गए। आपका क्या अनुभव है इस दिशा में, आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, अगर हम शिक्षा के अलावा दूसरे और भी सेक्टर्स देखें जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक सारे कार्यक्रम होते हैं, अगर डिजिटल इंडिया के तहत पूरे देश के सारे हम जो कार्यक्रम, इतनी हजारों स्कीम हैं जो सरकार को खुद भी नहीं पता, एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ, अगर हम उनकी मॉनिटरिंग एक प्लेटफॉर्म में कर दें, अगर हम उसमें कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम एक प्लेटफॉर्म में कर दें, तो जो राजीव गांधी के ज़माने से बात आ रही थी, जो आज तक चल रही है कि 1 रुपये में 15 पैसे पहुँचता है, तो डिजिटल में ये पारदर्शिता लानी है। सरकार अपनी पारदर्शिता, अपनी जवाबदेही करने के बजाय लोगों को डिजिटल से जोड़ने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन के खतरे, जिसमें प्राइवेसी के खतरों के बात आने लगी है। तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत सरकार को और पारदर्शी बनना है, सरकार को अपने सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बना के लोगों के सामने लाना है।
लग रहा है कि अभी सिस्टम पारदर्शी नहीं है, खतरे इसमें ज़्यादा है, जितना प्रचार किया जा रहा है वो
नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो डिजिटल इंडिया के तहत सरकार अपने सारे सिस्टम को एकजुट करके जनता के सामने, बहुत सीधी सी बात है कि हर स्टेट में 20 स्कीम चल रही हैं, सेंट्रल की 500 स्कीम चल रही हैं, टोटल मिला के देश में 1000 स्कीम चल रही हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसका हिसाब किताब एक प्लेटफॉर्म पे एक ऐप में आ जाए जिसके तहत लोग बोल सकें कि आपने मिड डे मील में ये था, ये मुझे लाभ नहीं मिला, विधवा पेंशन का ये
सारी बातें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और प्रधानमंत्री और सरकार जो बात कर रहे हैं वो 4E की बात कर रहे हैं कि आपको एजुकेट हम कर रहे हैं, आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इनकी इन पर ज्यादा फोकस है।
इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि चूंकि ये पूरा हमने बाजार के हवाले कर दिया डिजिटल इंडिया, तो भारत एक नई कॉलोनी बन गई है। और उस नई कॉलोनी का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि 2016 में गूगल की भारत से आमदनी 429,000 करोड़ हुई, जबकि उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसके हिसाब से उन्होंने टैक्स सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये भी दिया। तो लगभग भारत से जो डिजिटल इंडिया में जो व्यापार कर रही हैं कंपनियाँ, अगर वो 20,00,000 करोड़ का लगभग व्यापार कर रही हैं, उसमें भारत में अगर टैक्स नहीं मिल रहा है तो भारत की आर्थिक प्रगति कैसे होगी?
डिजिटल इंडिया का फायदा भारत को नहीं हो रहा है, दूसरी कंपनियां जो बाहर
डिजिटल इंडिया से जो व्यापार बन रहा है उस व्यापार का फायदा विदेशों में जा रहा है।
विराग जी, एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी, मैं कैलाश नाथ सिंह शंभुगंज जौनपुर से बोल रहा हूँ।
जी कैलाश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपनी बात रखिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी तरह तरह के जैसे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की जनता विकास नहीं चाहती है। भारत की ये खाली अपने केवल अपने बिरादरी के नेता की चाहती है।
जी, ये आपकी अपनी एक राय। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो, हेलो सर।
जी जी, अपना नाम बताइए।
महावीर सिंह बोलकर बताएं, उत्तर प्रदेश। हम सब बादशाह भैया, हम 4 साल सुनती है बीबीसी, हमें 42 साल है।
जी जी महावीर जी,
आज बता मैं तुम्हें असली बात क्या बताई है। ये प्रधानमंत्री एक तो झूठ बोलता है, गांव में डिजिटल जानते हैं ना, इंडिया का चीज हो तो डिजिटल तरक्की कैसे हुई
जी,
है।
ये आपका अपना एक मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह से आप इस मंच के आधार पर इस तरह सीधे आरोप लगाने का या अपनी भाषा संयत आप रखें, जो भी आपको कहना है सही तरीके से आप कहें। हमें सोशल मीडिया के जरिए भी कई कमेंट मिल रहे हैं। फेसबुक पर आई कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ देता हूं। शंभु शरण लिखते हैं कि क्या सरकार को लगता है कि सब कुछ एक बटन को क्लिक करके हासिल किया जा सकता है? सरकार के दावे सही नहीं है। जुनैद अली लिखते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुदूर इलाकों को इंटरनेट से जोड़ने में मदद मिली है, लेकिन रोजगार का उस तरह सृजन नहीं हो सका है जैसा दावा किया गया है। मरिंदर सिंह लिखते हैं कि पहले इंटरनेट काफ़ी महंगा था, इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, आज हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट है। ओसामा मंदर साहब, एक बार मैं दोबारा आपके पास लौट रहा हूँ। बड़ा सवाल जो एक रोजगार को लेकर आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर जो खोले गए हैं उससे 10,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तो आपने जैसे पहले कहा था कि करोड़ों लोगों को लाभ होने की बात है, लेकिन कितने करोड़? इसी तरह रोजगार की बात है, तो क्या इसको लेकर भी आप इसी नजरिए से देख रहे हैं?
देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर की जो बात है, अगर हम ये बात सही भी समझ लें कि 3,00,000 कॉमन सर्विस सेंटर खुले गए हैं, जो कि सच नहीं है, अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पूरे सच नहीं है कि जो सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी सर कॉमन सर्विस सेंटर का मॉडल है कि एक एंटरप्रेन्योर एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है और एक कॉमन सर्विस सेंटर में एक या दो कंप्यूटर होते हैं और स्कैनिंग होती है और कुछ कुछ सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की जाती है।
जी,
तो ये तो कहना नंबर के हिसाब से भी गलत हो गया कि 3,00,000 अगर आप खोल के देंगे तो 10,00,000 को रोजगार कैसे मिल गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। तो एक तो ये बात है कि नंबर्स में स्टैटिस्टिकल मिस्टेक्स या स्टैटिस्टिकल एग्जेजरेशन बहुत होते हैं और ये कहे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा कि डिजिटल इंडिया के तहत जो सबसे दो मेन स्कीम की बात कही प्रधानमंत्री जी ने, एक कहा कि ऑप्टिक फाइबर से गांव को जोड़ा जा रहा है, जो कि मैं भी मानता हूं कि उससे अच्छा कोई स्कीम हो नहीं सकता है जिसका नाम भारत नेट है। और दूसरा उन्होंने कहा साक्षरता से एम्पावरमेंट होती है, जिसमें 6 करोड़ लोगों को साक्षर करने के लिए सरकार ने बजट में एलोकेशन भी दिया है
जी।
और इसके ये भी बहुत जरूरी है कि किस तरह के लोगों को साक्षरता दी जाए। पहली टिप्पणी मैं करना चाहता हूं कि जो 1,10,000 या 20,000 ऐसा कुछ बता रही है सरकार के पंचायतों में कनेक्शन पहुंच गया है और वो रेडी हैं, सर्विस रेडी एक वर्ड यूज करते हैं वो लोग, हमने सर्वे किया तो पता लगा कि उससे 15 से 20% भी काम नहीं कर रहे हैं।
यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि 20% भी काम नहीं कर रहे हैं?
काम नहीं कर रहे हैं जहां पर इंटरनेट प्रॉपरली आए और वो 100 Mbps काम करे और वो बाकी लोग उसको यूज कर सकें। ये तीनों चीजें, ये वैसे ही है जैसे BSNL का नेटवर्क आप बिछा दें लेकिन BSNL काम ना करे, या कोई भी नेटवर्क आप दे, जैसे एयरटेल है, कॉल ड्रॉप होती जाए बार बार।
मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि दावे जो हैं उनके मुकाबले आपको क्या लगता है कि सिर्फ 20% ही काम हो रहा है?
नहीं, अब सारे दावों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन दावों के बारे में मैं जानता हूं और सर्वे करके हम लोगों ने मालूम किया है उसमें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मतलब मेरा खुद पर्सनली फेवरेट स्कीम है भारतनेट
जी,
और मैं उसको आज से नहीं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से लेके अभी तक, और दोनों ही गवर्नमेंट ने उसमें ठीक से काम नहीं किया
जी। और मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
नमस्कार, वासिला, मैं आंध्र बोल रहा हूँ, चौट बाढ़ में रास्ता
जी। बताइए, अपनी बात रखिए।
ये डिजिटल इंडिया स्कीम है, ये नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया स्कीम है
जी,
और ये कभी तो कोई काम शुरू होगा तब समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रति लोग जुड़ेंगे और लोगों को फायदा, देश को,
यानी फायदा धीमे धीमे आएगा। एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी, अपना रेडियो बंद कर दीजिए, पीछे से आपकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं आ रही है, यही आवाज़ रिपीट हो रही है। अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
जी, मैं रविकर शुक्ला गोंडा जिला से बोल रहा हूँ।
जी बताइए।
उत्तर प्रदेश से। जी, डिजिटल का मतलब ये है किसी भी बैंक में आप चले जाओ वहाँ नेटवर्क रहता ही नहीं, किसी भी बैंक में, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं रहता। डिजिटल का मतलब है किसी भी जगह पर जाओ, किसी भी वक्त जाओ, तुरंत काम हो जाए
जी। लेकिन आपका अनुभव है कि इंटरनेट आपको नहीं मिलता है। विराग गुप्ता साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, नेट की एक बड़ी समस्या है कि इंटरनेट कनेक्शन को लेकर ये दिक्कत बता रहे हैं, तो जब दिक्कत है और प्रधानमंत्री दावे करते हैं कि भ्रष्टाचार को भी इससे रोकने में मदद मिलती है, आप एक वकील भी हैं, जब इंटरनेट कनेक्शन ही उस तरह से स्मूथ नहीं होगा तो लोग कैसे क्या करेंगे?
इसमें देखिए बहुत बड़ा फेलियर ट्राई का है। कॉल ड्राप का मामला जब मैंने हैंडल किया था तो कॉल ड्राप में हमने बोला था कि आप कॉल ड्राप की आप अगर नहीं सर्विस दे पा रहे हैं तो आपको पैसे चार्ज करने का कोई हक नहीं है, और प्राइवेट कंपनियों ने 66,000 करोड़ रुपये कॉल ड्राप के बावजूद लोगों से वसूला। तो ये हमारे बड़े सवाल हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल प्रसार में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर उन कंपनियों को आप रेगुलेट तो करेंगे। जैसे आपने भी बोला बच्चों की शिक्षा के बारे में, तो अब अगर 13 साल से छोटी उम्र के बच्चे कायदे से सोशल मीडिया में नहीं जुड़ सकते हैं, 76% बच्चों को इन कंपनियों ने भ्रामक तरीके से जोड़ा है, उसके लिए अमेरिका यूरोप में कानून है, भारत में भी नियम है, पर उनका पालन नहीं होता है, तो उससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें, देश में लोकतंत्र और चुनाव, तो चुनावी व्यवस्था पूरी सोशल मीडिया में लड़ी जाने लगी है, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस, उनका पालन नहीं होता है, और उसके बारे में बोला गया कि फेसबुक से बोलो कि वो 2019 में किसी तरह से डेटा का वो लीकेज नहीं करेगा। उन्होंने पूरे यूरोप में उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दे के माफ़ी मांगी, पर भारत में उन्होंने नहीं मांगी है
जी। बिल्कुल, ये एक दिक्कतें हैं। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात भी रखिए।
जी सर, बुद्धि कुमार बोल रहे हैं हम।
जी बुद्धि जी, जी बताइए।
जी सर, डिजिटल इंडिया ये एक सराहनीय कदम है, इसमें दो कदम दो राय नहीं है, लेकिन इसका जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, जिस तरह से हमारे गांव में घर में खास करके एग्जाम में धोखाधड़ी का मामला जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के वजह से जारी हुआ है, ये सर एक चिंताजनक विषय है, और इस पर सरकार को सबसे पहले इस विषय पे काम करना चाहिए जो इससे फ्रॉडनेस कैसे रोका जाए,
कैसे इसको रोका जाए। बिल्कुल, ओसामा मंजर साहब, मैं एक टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा कि दिक्कतों की कई सारी बातें हुई हैं, श्रोताओं ने भी बात की और आप और विराग गुप्ता साहब ने भी इनको रखा, समाधान के रास्ते क्या है, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, समाधान के रास्ते हैं कि हम लोग इंस्टीट्यूशनली एम्पावरमेंट के बारे में सोचें और इंडिविजुअली ना सोचें। जैसे पंचायत जो है, अगर गवर्नेंस ठीक करनी है तो पंचायत लेवल पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, और पंचायत लेवल पे जो 3 मिलियन 30 लाख लोग जो हम इलेक्ट करते हैं उनको हम साक्षर करें और उनको मजबूत करें, टीचर की कम्युनिटी को मजबूत करें एजुकेशन में, स्कूल्स में ब्रॉडबैंड लेके जाएं ताकि एजुकेशन अच्छा हो, इसी तरह से हेल्थ वर्कर्स के पास हम लेके जाएं, उनको सक्षम करें, तो जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी हमारी जो
उनको सशक्त किया जाए। विराग गुप्ता साहब, आप भी अगर कुछ कहना चाहें, दो लाइन,
सिर्फ दो छोटी बातें। एक, भारत में हर इंटरनेट कंपनी के शिकायत अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका कानून प्रावधान है, और विदेश की सारी कंपनियों के भारत में ऑफिस होने चाहिए जिससे उनकी जवाबदेही हो और भारत में टैक्स मिले।
जी, वक्त हमारे पास इतना ही है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए विराग गुप्ता जी और ओसामा मंजर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। स्टूडियो का संचालन किया अजित सारथी ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया कुलदीप मिश्र ने। अगले सप्ताह फिर आपसे किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।